नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमरीका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांस्वा फिलिप शॉपनिये के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमरीकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग स्थानों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।